ओम शांति। तो अभी हम एक बहुत सुंदर क्रिएटिव एक्टिविटी करेंगे, जिसे हम वर्कशॉप भी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं चिंतन आत्मा के लिए बहुत जरूरी चीज है। 69 या 70 की एक अव्यक्त मुरली में कहीं बाबा ने एक बार कहा है, मुझे डेट नहीं याद आ रहा, चिंतन से आत्मा की चमक बढ़ती है। चिंतन से आत्मा की, हाँ, अब तक तो हमने सुना था कि योग से आत्मा की चमक बढ़ती है, योग से भी आत्मा की, बल्कि योग से तो बढ़ती ही है, परंतु चिंतन यानी ज्ञान, ये ज्ञान का हमारा पक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए। चिंतन भी कई बार योग जितना शक्तिशाली हो जाता है। चिंतन आत्मा को पॉलिश करने का काम करता है, आत्मा को घिसने का काम करता है। जैसे किसी धातु को अगर आप रोज रोज घिसें थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसकी चमक बढ़ती जाती है। आपके घर में कॉपर के मटके होते हैं, थालियां होती हैं, या कांसे के बर्तन होते हैं, ब्रॉन्ज आदि के, अगर उसको थोड़ा दिन तक छोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, उस पर दाग आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं। परंतु यदि रोज उसको घिस घिस करके साफ किया जाए तो वो एकदम चमकता रहता है ना। तो चिंतन भी आत्मा के लिए एक पॉलिश है, और ये पक्ष हमारा यानी हम सभी ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं कमजोर है। हमारा ध्यान योग पर ज्यादा रहता है, मुरली सुनने पर भी रहता है, लेकिन जो कुछ सुना है उसका मंथन करना, उसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। कल का स्लोगन किसे याद है? कल की मुरली का स्लोगन क्या था? क्या था कल की मुरली का स्लोगन? अगर आत्मा के ऊपर जो वेस्ट का वेट है उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कल का स्लोगन भूल गए ना, वेट। ये जो व्यर्थ है वो वेट है, वजन है आत्मा के ऊपर, अगर उसको हटाना है तो बाबा ने कहा उसके लिए मनन की आवश्यकता है, बिजी रहने की भी आवश्यकता है और मनन करने की आवश्यकता है। तो ये चिंतन आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। चिंतन से आत्मा की समझ बढ़ती है, समझ से हमारा जीवन सरल बनता है। इसी संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, एक ही परिस्थिति में कोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कोई सामान्य अवस्था में रहता है, और कोई हंसते हंसते उसको पार कर लेता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी समझ कैसी है, और ये समझ ज्ञान के मनन चिंतन से आती है। तो हम सबको अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय निकाल करके ज्ञान का चिंतन जरूर करना चाहिए। ज्ञान हमारे पास है, सबके पास है, और बहुत ज्यादा है। जो कुछ एक बड़ा महारथी स्टेज पर बैठ करके ज्ञान सुनाता है, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर भी है, परंतु वो ज्ञान समय पर यूज हो सके, समय पर वो निकल सके, ये सबसे नहीं होता है। हम सबको वाचा सेवा भी करनी है, कर्मणा सेवा हम तो सभी करते हैं, लेकिन अगर वाचा सेवा के लिए अगर आपको मौका दिया जाए, किसी को आधे घंटे का ज्ञान सुनाना है, एक विषय दे दिया जाए आपको, एकाग्रता पर सुनाना है, निर्विघ्न जीवन पर सुनाना है, पवित्रता पर सुनाना है, अन्न की शुद्धि पर सुनाना है, हमें से कितना लोग सुना पाएंगे? कितने लोग सुना पाएंगे, गिनती के हाथ खड़े हो रहे हैं ना, इतनी बड़ी सभा में 10-15 लोग हाथ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान हमारे पास नहीं है, है। जब इनफॉर्मल वे में हम बैठ करके बातें करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो क्रम से नहीं होता है, वो सिस्टमेटिक नहीं होता है। चिंतन से हमारा ज्ञान क्रमबद्ध होता है। जो कुछ अंदर है वो बाहर निकलता है, वो एक क्रम में सेट होता है। तो वाचा सेवा में भी इससे मदद मिलती है, इससे हमारी समझ बढ़ती है, इससे आत्मा की चमक बढ़ती है, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। अभी 3-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था, चिंतन से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और हम जानते हैं कि जब तक हमारी एकाग्रता बढ़ेगी नहीं, हम एक अच्छा पुरुषार्थी कभी नहीं बन पाएंगे। तो आज एक वर्कशॉप करेंगे, आपको एक हम विषय देंगे, आप जहां बैठे हैं वही 2-2, 3-3 लोगों का ग्रुप बना लेंगे और उस विषय पर आप चर्चा करेंगे और उसमें से सार निकालेंगे। आप में से कोई एक ग्रुप लीडर बन जाएगा जो नोट करेगा, जो भी पॉइंट्स चर्चा में आएंगी उसको आप लिखेंगे, और आप में से कुछ 3-4 लोगों से हम यहां पर सुनेंगे कि आपने क्या मक्खन निकाला, आपके चिंतन का क्या सार निकला है। बहुत सारे लोग हैं, हम सबकी बातें तो नहीं सुन सकते, लेकिन 2-4-5 लोगों को जरूर हम चाहेंगे कि आप स्टेज पर आकर के आप अपने मंथन का सार सुनाएं। तो एक विषय हम आपको दे रहे हैं जिस पर आपको चिंतन करना है, और वो विषय है निर्विघ्न जीवन। सबके पास डायरी पेन है? डायरी पेन किसके पास नहीं, हाथ खड़ा करें। तो बगल से किसी से पेपर वगैरह आप लोग ले लें, और आप सब विद्यार्थी हैं, आप सबके पास डायरी पेन जरूर होना चाहिए, क्लास में आते हैं तो। निर्विघ्न जीवन, इस पर आपको चिंतन करना है। आप कैसे चिंतन करना है, जब भी हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं उसको आप 2-3 छोटे छोटे भागों में बांट लें। ये चिंतन करने की एक अच्छी कला है। अपने विषय को, मुख्य विषय को आप 2-3 छोटे छोटे सब डिविजन्स में बांट लें और फिर उस पर चिंतन करेंगे तो चिंतन करना भी सहज होता है, और ये ज्ञान जब दूसरों को हम सुनाते हैं तो सुनाने में भी सहज और अच्छा रहता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है। तो आज का जो आपका चिंतन का विषय है निर्विघ्न जीवन, इसमें जो पहला सब टॉपिक है कारण, विघ्नों का कारण क्या है, हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं उनका कारण क्या है, पहला। दूसरा सब टॉपिक है हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उसका हमारे पुरुषार्थ पर क्या असर पड़ता है, हमारे पुरुषार्थ पर क्या असर पड़ता है। साथ ही साथ हमारे पारिवारिक, सामाजिक, ईश्वरीय जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, तो भिन्न भिन्न पहलुओं में इसका क्या असर है उस पर चिंतन करेंगे। और तीसरा सब टॉपिक है निर्विघ्न रहने के लिए क्या करें, क्या पुरुषार्थ करें, किन किन धारणाओं की, किन किन गुणों की आवश्यकता होती है यदि हमें निर्विघ्न रहना है तो। तो 3 सब टॉपिक्स जिस पर आपको चिंतन करना है, विघ्नों का कारण, दूसरा पुरुषार्थ पर इसका असर क्या है, तीसरा निर्विघ्न रहने के लिए हम क्या करें, कैसे निर्विघ्न रह सकते हैं। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो आप जहां बैठे हैं वहीं आसपास में थोड़ा खिसक करके 2-2, 3-3, 4-4 का आप अपनी सहूलियत अनुसार ग्रुप बना लें, और बहुत धीमी आवाज में आप डिस्कशन करेंगे ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, और एक जने लिखेगा। आपके पास टोटल 20 मिनट का समय है, 11:50 हो रहा है, 12 बज के 10 मिनट पर आपका ये जो वर्कशॉप है पूरा किया जाएगा, फिर कुछ लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे, आप अपना अनुभव सुनाएंगे। अभी आप शुरू करें। हो गया सबका? आप सब बैठ जाएं, मैं बुलाता हूँ, सभी लोग बैठ जाएं, मैं बुलाऊंगा एक एक करके। सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया सबका? और समय चाहिए? हो गया। कुछ निकला सार? कुछ बुद्धि चली? ठीक है। तो अभी सबसे पहले कौन सुनाएगा? सिर्फ 2 मिनट में आपको सार रूप में क्या पॉइंट्स निकालना है आपने, आ जाएं इधर सामने, आ जाएं इधर, माइक होगा सामने। हाँ, एक जने आके साइड में खड़े हो जाएं। नेक्स्ट, बस 2-2 मिनट में आपको सुनाना है सार रूप में।
ओम शांति। विघ्नों के कारण देहाभिमान और ईगो का आना, परचिंतन, परदर्शन, अमृत वेला नहीं होता तो विघ्न अपने आप ही आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता उनको। लौकिक जिम्मेदारियां होते हुए भी व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, इच्छाएं बहुत होने के कारण जो है भटक जाते हैं, श्रीमत का पालन नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पर भी संशय आ जाता है, बाबा की बातों पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता, संदोष के कारण व्यसनों में भी चले जाते हैं तो विघ्नों का कारण भी बन जाता है, फिर मैं और मेरेपन में आ जाते हैं। खान पान की अशुद्धि तो सबसे पहले वहां पर ध्यान ही नहीं जाता कि क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट, हमारे पुरुषार्थ पर क्या असर पड़ता है? योग नहीं लगता, ज्ञान मुरली नहीं सुनते, सेवा योग युक्त नहीं होती, डिससर्विस बहुत होती है, संशय बुद्धि बनते हैं, पवित्रता और बाकी धारणाओं पर तो ध्यान ही नहीं जाता, तो पुरुषार्थ पर ऐसा असर पड़ता है कि उतरती कला का ही जो है हमारे को जो है मुंह देखना पड़ता है। समय और संकल्प तो अपने भी वेस्ट करते हैं, औरों के भी करते हैं। नेक्स्ट, निमित्त निर्माण, नेक्स्ट इज निर्विघ्न रहने के जो है क्या क्या जो है कर सकते हैं, हम पुरुषार्थ पर जो है निर्भर है, और वो है निमित्त निर्माण और ट्रस्टीपन का। जब हमारे में ये पहला आ जाएगा तब जाकर जो है हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, निर्विघ्न होगा। जैसा कि और आगे है, श्रीमत का पालन, पढ़ाई, बाबा संग, योग, सच्ची यज्ञ प्रति सेवा, बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना, यज्ञ प्रति निश्चय और ऑनेस्टी के साथ, बाबा के साथ भी ऑनेस्ट, ईश्वरीय परिवार के साथ भी ऑनेस्ट और स्वयं के साथ भी जो है ऑनेस्ट रहना। हां जी का पार्ट, एवरेडी का पार्ट, ये दोनों जो है लेसन होना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करेंगे तो बाबा हमें अपने आप ही आगे बढ़ाएगा। मुरली, आध्यात्मिक ज्ञान, मुरली तो है ही, चाहे वो मुरली साकार है चाहे वो अव्यक्त वाणी है, इसके अलावा आध्यात्मिक ज्ञान बाबा के पास जो है बहुत, जैसे स्पार्क विंग के पास भी बहुत जो है इतना पढ़ने के लिए है, उनको भी अगर हम ज्ञान चिंतन मंथन करेंगे तो मक्खन अपने आप निकल आएगा। नेक्स्ट, पवित्रता की दृढ़ता होनी चाहिए कि मैंने इसको फॉलो करना ही है, तो निर्विघ्न बन जाएंगे, मर्यादाओं का पालन तो अपने आप ही होने लग जाएगा। ओम शांति।
बहुत अच्छा, थोड़ा संक्षेप में ही सुनाए, केवल पॉइंट्स सुनाए।
मैं बिहार से आई हूँ, बिहार औरंगाबाद जिले से हूँ, मेरा नाम नीलम है। हम तो ज्यादा नहीं संक्षेप में ही लिखे हैं कि विघ्नों को आने के मुख्य कारण है, मूल कारण है पर चिंतन, पर दर्शन और व्यर्थ संकल्प। जब हम पर चिंतन में फंस जाते हैं, किसी का पर दर्शन करने लगते हैं, किसी के नाम रूप में फंसते हैं, किसी के लगाव में आ जाते हैं, उसकी विशेषता के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हमारे विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। इसका मेन कारण है, विघ्नों का आने का मेन कारण है परचिंतन, परदर्शन। इसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी के लगाव झुकाव में आते हैं तो सबसे पहले तो बाबा बुद्धि से भूलता है, सबसे पहले, फिर मुरली छूटने लगती है धीरे धीरे, धीरे धीरे जो सर्विस होने लगता है, फिर वही लोग जाकर दुनिया में ट्रेटर बन जाते हैं, जो बाबा के अपोजिट बातें करने लगते हैं। इसीलिए हमें परचिंतन प्रदर्शन में नहीं जाना है, और निर्विघ्न रहने का बनना है तो हमें किसी वस्तु वैभव और देहधारी में नहीं फंसना है, किसी की लगाव झुकाव में हमें नहीं आना है। जिस तरह से अभी निर्मला दीदी ने बताए कि किसी की याद में लगाव के कारण कोई माता 100 साल रोती थी, लेकिन हमें किसी की लगाव में नहीं आना है। और इस जब हमें निर्विघ्न बनना है तो हमें बाबा के पूरी पूरी सिरमत पर चलना है, और सिरमत के अंदर तो सारी कुछ आ जाती है। अमृत बेले से ही लेकर, जैसे अभी निर्मला दीदी ने अभी बताई कि अमृत बेला पावरफुल हो, कभी भी मुरली मिस ना हो, कभी नुमा शाम का योग ना छूटे, और तो और सबसे मेन है कर्म योग। ओम शांति।
बढ़िया। नेक्स्ट, टीचर्स बहनों ने अगर चिंतन किया हो तो एक दो टीचर्स बहनें भी आ सकती हैं, सुनाए।
ओम शांति। भाई को धर्मराजू कहते हैं, अलवेलापन, कुवचन, कुदृष्टि, परदर्शन, परचिंतन, ज्ञान की कमी, ये सब विघ्नों का आने का कारण है। विघ्न आ जाता है तो शांति एकाग्रता भंग हो जाता है, परिवार में बोझा बढ़ता है तो हम रोल मॉडल नहीं बन पाते हैं, संतुष्ट ना बन पाते ना बना पाते हैं। अपना अशांति के कारण परिवार में समाज में शांति कायम नहीं होती है, खुशी कम हो जाती है, समाज का हम शिक्षक नहीं बन पाते हैं। तीसरा है, विघ्न ना आए रोज दिनचर्या बनाकर उस पर अड़िग रहना है, बहुत समय अंतर्मुखी रहना है, अपनी कमियों को चेक करना है और चेंज करना है। संकल्प जितना शुद्ध पवित्र होगा, विघ्न हल्का महसूस होगा। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखना है, प्रकृति को रोज सकाश देना है। ब्राह्मणों का दिनचर्या को पूरा पालन करना है, जो भी बोझा है बाबा को दे देना है। हर बात में निमित्त और ट्रस्टी बनना है, करण करावन बाबा है, हम फल की आशा नहीं रखते हैं, इसी से हम निर्विघ्न रहेंगे, रह सकते हैं और दुनिया को हम बता सकते हैं निर्विघ्न रहने का तरीका। ओम शांति।
ओम शांति। निर्विघ्न रहने के 2-3 कारण जो निकाला मैंने अभी टीम में डिस्कस करके, श्रीमद का उल्लंघन, मुरली मिस करना, अमृत वेले मिस करना, ये सब करना, संपूर्ण त्याग नहीं, लगाव झुकाव किसी के प्रति, और विघ्न का ये कारण आता है कि हम अलौकिक जीवन जहां जी रहे हैं सेंटर में, वहां हम लौकिकता में आ जाते हैं, आपस में लेन देन करने लगते हैं, आपस में मुरली का लेन देन करने के बजाय आपस में अपनी लेन देन करने लगते हैं, व्यर्थ में खो जाते हैं, विकार आते हैं, इस वजह से विघ्न आते हैं। अब इसका पारिवारिक जीवन पे क्या असर पड़ता है, हम जो लौकिक परिवार में रहते हैं वहां हमारा आपसी प्यार खत्म हो जाता है, बाबा ने जो सिखाया है आपसी प्यार खत्म हो जाता है, एक दूसरे के बारे में पर चिंतन करने लगते हैं, तो इसका पारिवारिक असर ये है। और इसका सामाजिक असर ये है कि अगर हम विघ्न में है तो बाबा जो हमें विश्व कल्याण के लिए भेजा है वो हम विश्व कल्याण नहीं कर पाएंगे, और स्वयं विघ्न में होने के कारण अगर हम विघ्न में है तो हम विकारों में रहेंगे, तो हम अपना नाम, बाबा का नाम और विद्यालय का नाम सामाजिक जीवन में खराब कर बैठेंगे। इसीलिए हमें विघ्नों से बचना है। और ईश्वरीय ज्ञान में अगर हम विघ्न आ रहे हैं तो उससे ईश्वरीय ज्ञान में ये नुकसान है कि संगठन को हम कमजोर कर देंगे, अगर हम विघ्न में हैं तो संगठन को कमजोर कर देंगे, मर्यादा की लकीर पार कर देंगे, और ईश्वरीय सेवाओं जो है उसमें विघ्न आने लगेगी, ईश्वरीय सेवाओं कर नहीं पाएंगे। इसका निवारण जो निकला वो ये है कि हम एक मत रहें, मन भेद हो अपने में पर मत भेद ना हो, और क्या हो कि संगठन में एक दूसरे का आदर करें, और जिस आत्मा के प्रति हमारा विघ्न आ रहा है उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतन रखें, उसके प्रति कोई गैर या विद्वेष भाव ये सब ना रखें। ओम शांति।
ओम शांति। ये भाई ने मेरे टीम में जो डिस्कशन हुआ वो सबका जवाब इनके पास था, इन्होंने दिया है, लेकिन मेरी जो टीम थी वो माताओं की टीम थी, और माताएं बहुत भावनात्मक रूप से उसमें जुड़ी थी, भावनाओं से जुड़ी होती, इसलिए मैं सोची कि उनकी बातों को मैं रख देती हूँ। और निष्कर्ष यही निकला है, मैंने भी माताओं को कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, जो बाबा कहते हैं श्रीमत पे चलना है तो चलना है, लेकिन घर में घमासान नहीं करना है। अपने जीवन को युक्ति युक्त होकर जीना है, हर बात के लिए एक टेक्निक निकालना है और उसी से आप निर्विघ्न जीवन जी सकते हैं। जब तक निर्विघ्न जीवन नहीं जिएंगे तब तक आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे और शूद्रपना नहीं जाएगा। आपको बनना है ब्राह्मण और बन जाएंगे आप शूद्र, जिसकी वजह से सामाजिक असर ये होता है कि अज्ञानी जो है वो बार बार गलती करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्ञानी एक सेकंड के लिए भी गलती करे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये सामाजिक असर पड़ता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हम देवता हैं, अपनी विशेषताओं को पहचानना है और हमें हमेशा इस सम्मान में रहना है कि मैं देवता हूँ और जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं वो अज्ञानी हैं, उन्हें मुझे सिर्फ माफ करना है, उसमें मुझे उलझना नहीं है। ओम शांति। मेरा नाम वंदना है और मैं गीता पाठशाला चलाती हूँ, एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में और एक पटना डिस्ट्रिक्ट में।
एक चीज मैं बताना चाहूंगा।
ओम शांति। मैं विजय भाई।
देखिए, विघ्नों का असर तो सर्वत्र पड़ता है, लेकिन हमने टॉपिक क्या दिया था, हमारे पुरुषार्थ पर उसका क्या असर पड़ता है, विघ्नों के कारण किन किन कारणों से हमारे ईश्वरीय जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उसका हमारे पुरुषार्थ पर स्पेसिफिक आप इस पे चर्चा करें कि हमारे पुरुषार्थ पर उसका क्या अधिक रोल है और फिर उसको पुरुषार्थ को हम ठीक ठाक रखें उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, तो इस पर अगर आप बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ओम शांति। विजय भाई, विक्रमगंज। निर्विघ्न जीवन में विघ्न आने का कारण सबसे पहला है देह अभिमान आदि, माया की प्रवेशता। आत्मिक अवस्था एकदम बिगड़ ही जाती है विकारों के कारण, हम अपने आत्मिक अवस्था में टिक नहीं पाते हैं और किसी भी तरह का हम बाबा से जो कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसका पुरुषार्थ पर असर पड़ता है कि न तो हम परिवार में सामंजन स्थापित कर सकते हैं, न समाज में सही अपना मूल्य दे सकते हैं, न समाज हमको कोई कदर कर सकता है, न तो इस ईश्वरीय परिवार में ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। सही परखने की, सही निर्णय लेने की सही शक्ति मिलती ही नहीं है, उसमें बुद्धि मारी जाती है। अब इसको निर्विघ्न बनाने के लिए हमेशा हमको देही अभिमानी अवस्था में रहना होगा, अमृत वेले का सफल पालन करना होगा, बाबा पर पूर्ण निश्चय करना पड़ेगा, श्रीमत का पालन करना पड़ेगा और श्रीमत के मर्यादा के अंदर रहना ही होगा, तभी हम निर्विघ्न जीवन जी सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
आप लोगों को कल बताया था ताली कैसे बजानी है, आप सब मौन में है ना, तो ताली ना बजाएं।
आज का विषय है निर्विघ्न जीवन पर चिंतन। इसके कारण है, हम ऐसा देखते हैं, अनुभव की बात है कि जिनके पास जितना बड़ा कारोबार है उनके साथ उतने ही ज्यादा विघ्न हैं, परेशानी है और उन परेशानियों में ही फंसे रहते हैं। अपने आध्यात्मिक जो उन्नति होनी चाहिए वह नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है अशिक्षा। परिवार में लोग अशिक्षित हैं और हम अध्यात्म बढ़ने का कोशिश करते हैं तो ये तो बात को नहीं समझते हैं और हमें बाधा डालते हैं। जैसे हम माउंट आबू आए हैं तो जो परिवार में अशिक्षित लोग हैं उनको लगता है कि बेकार का पैसा खर्च करने जा रहा है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, उस पैसे का उपयोग दूसरे कामों में लगाया जाए, तो अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण बनता है। तीसरा कारण है आपदाएं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, परिवार में कुछ बड़ा विघ्न पैदा होता है, तो ये सब कारण बनते हैं जिसके वजह से हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाते, विघ्न आते रहता है। अब इसका प्रभाव यह है, अभी भाई साहब ने बतलाया कि पुरुषार्थ के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम एकाग्र रह सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब निवारण के लिए है कि हम अपना कारोबार बढ़ावें लेकिन एक सीमित दायरे में चलें जिससे हमारा जो मुख्य लक्ष्य है
उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें और अशिक्षा जो कारण बना है परिवार के लोगों को शिक्षित बनावें और आपदाएं जो आती हैं वैसी परिस्थिति में धैर्य से काम लें और ईश्वर चिंतन करें पर चिंतन न करें, मुरली सुने, अमृत वेला का जोग करें। ओम शांति।
अभी समय हो गया है, इसके बाद बाकी लोग बैठ जाएं। एक बहन और बोल दे, टीचर बहन, बाकी
ओम शांति,
सारे लोग बैठ जाएं।
मेरा नाम राजेश बहन,
बैठ जाएं। समय हो
रहा है, राउरकेला से हैं। तो आज का जो प्रश्न है कि निर्विघ्न जीवन के लिए विघ्नों का कारण क्या आ जाता है, तो सभी प्रश्न के उत्तर काफी कुछ निकल कर आए हैं, तो मैं कुछ पर प्रकाश डालती हूँ। विघ्नों का कारण ही है ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन। इंसान में अगर हम जाते हैं तो जब भी हमसे ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो कुछ ना कुछ विघ्न अवश्य आते हैं। तो विघ्न आने का कारण जो ईश्वरीय मर्यादाओं के उल्लंघन में आता है, तो सबसे पहले देह अभिमान, सहन शक्ति की कमी, व्यर्थ पर चिंतन प्रदर्शन, मान अपमान में फंसना, लगाव झुकाव में आ जाना आदि आदि है। तो दूसरा है कि पुरुषार्थ पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला पुरुषार्थ पर यही असर होगा कि हमें अनुभव नहीं होगा, योग का अनुभव नहीं होगा, योग नहीं लगेगा। दूसरा, खुशी गायब हो जाएगी, माया की प्रवेशता, कनेक्शन लूज हो जाना, पारिवारिक जीवन में भी सहज नहीं रहना, किसी भी बात में मन नहीं लगना और चिड़चिड़ापन, ये सार में है, तो डिटेल में तो बहुत कुछ आ चुका है। तो नेक्स्ट है कि मनन चिंतन करना, निर्विघ्न रहने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले निर्विघ्न रहने के लिए ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना है, जो बाबा ने हमें सुबह से लेकर रात तक की मर्यादाएं बताई हैं, अमृत वेले का पावरफुल योग, मुरली क्लास, जो भी ट्रैफिक कंट्रोल, और जीवन में बाबा ने हमें जो जो मर्यादाएं बताई उन मर्यादाओं में अगर हम चलते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, सामने वाले को भी आत्मा समझते हैं और हमारा मन बुद्धि का द्वार परम धाम शिव बाबा पर लगातार एकाग्र रहता है, तो निर्विघ्न अवस्था हमारी अवश्य रहती है, नो डाउट। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
माइक को थोड़ा ऊपर ले लीजिए, माइक को थोड़ा ऊपर ले लीजिए।
तो विघ्नों का कारण है देह अभिमान, व्यर्थ संकल्प पर चिंतन। अगर हम देही अभिमानी रहेंगे तो मेरी स्थिति अच्छी रहेगी, कोई भी बात, समय, व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। व्यर्थ संकल्प में मेरा समय नष्ट हो जाता है। अगर व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगाएं तो पर चिंतन निर्विघ्न बन जाएंगे तथा स्वदर्शन चक्र घुमाएं, ड्रामा का पार्ट समझकर साक्षी भाव से हो जाएं। ओम शांति।
दे दीजिए, बहन जी को दे दीजिए।
ओम शांति। तो आज का पहला प्रश्न था विघ्न का कारण क्या है। तो सभी ने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए और हमारा जो पॉइंट्स है देह अभिमान, तो देह अभिमान जब आता है, जब हम खुद को शरीर समझ लेते हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, उस समय मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होता है, क्या, क्यों, कोई हमको कुछ बोलता है तो उसमें मन में आता है कि क्यों बोला ऐसा, कि कोई भी हमारे सामने कुछ कर लेता है हमारे हिसाब से नहीं बनता है तो हम बोलते हैं कि ये क्यों ऐसा किया। तो जितना देह अभिमान आ जाता है और व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प, अनुमान लगाना, समझ में कमी हो जाना, बहुत ज्यादा एक ही बात में सोचते रहते हैं, इसी कारण से विघ्न आता है। और विघ्न पुरुषार्थ के ऊपर उसका प्रभाव है, पहले तो योग ही नहीं लगेगा, उसी बात का मन में संकल्प चलता रहेगा, मेहनत लगता है योग में, योग में भी ढीलापन, क्लास सब मिस हो जाएगा, उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा, ज्ञान योग में मन नहीं लगेगा, अविनाशी खजाना जो है संकल्प स्वास सब व्यर्थ चला जाएगा। फिर निर्विघ्न रहने के लिए क्या करना है, पहले तो हमको आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, खुद को आत्मा समझना है और दूसरों को आत्मा रूप में देखने का अभ्यास करना है, फिर अशरीरीपन का अभ्यास करना है, बाप दादा ने जो ड्रिल सिखाए हैं उस ड्रिल को बीच बीच में करना है, ट्रैफिक कंट्रोल के समय कोई भी सभी को सभी के ड्रामा में पार्ट को देखते हुए सुभावना शुभकामना रखना है, साथ साथ सहन शक्ति को बढ़ाना है, परचिंतन से मुक्त होना है, बीती को बिंदी लगाना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है और स्वभाव में सरलता लाना है। परसों बाबा ने मुरली ने बोले थे कि जितना हमारा स्वभाव सरल होता जाएगा और ज्ञान का मनन चिंतन करते जाएंगे तो हम हल्का रहेंगे और निर्विघ्न रह सकते हैं। एक दूसरे को रिगार्ड करना है, कोई भी बात किसी को बोलने से पहले सोचना है फिर बोलना है, सदा सकारात्मक भावना रखना है। ओम शांति।
बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा चिंतन किया है। इस चिंतन को आप लोग कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल मधुबन में आप आए हैं तो यहाँ कराया गया तो आपने किया। अच्छा लगा ये आपको? जब ग्रुप में बैठ के हम चिंतन करते हैं तो कुछ अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अंदर का सोया हुआ ज्ञान जागृत हो रहा है। तो आप सब जब भी सेंटर पे जाएं तो वहां भी संडे को या जब भी छुट्टी हो तो बहन जी से बातचीत करके आपस में ग्रुप बना करके ज्ञान की चर्चा करें। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जिस लक्ष्य से आपको विषय दिया था उतनी गहराई में आप सब नहीं पहुंच पाए जो मैं समझता था, और भी इसकी गहराई में पहुंचा जा सकता है। भोजन के बाद आपके पास 4 बजे तक का समय है, 4:30 बजे तक का समय है, आप सब बैठ करके चिंतन करना कि इसकी गहराई में और कैसे जाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देह अभिमान को इसका कारण बताया। अब देह अभिमान में तो सब कुछ आ जाता है, देह अभिमान माना पांचों ही विकार। ऐसी प्रैक्टिकल बातें हमें निकालनी है जो मेरे व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर असर डाल रही है। हमें आम नहीं, जब भी हम चर्चा करें या ज्ञान का चिंतन करें तो हमको ये लक्ष्य रखना चाहिए कि वो बातों को हम निकालें जो व्यक्तिगत डिस्टर्ब कर रही है। खुद को सामने रख करके ऐसा चिंतन करें कि वो बातें जो मेरे साधना को प्रभावित कर रही हैं, तो ये विघ्न कैसे, किन किन स्वरूपों में, किन किन प्रकारों में मेरी साधना को प्रभावित करते हैं, और जो कारण है निवारण भी उसी के साथ होता है। जैसे किसी ने कहा कि बहुत ज्यादा कारोबार में उलझे रहना, ये एक प्रैक्टिकल विषय है। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे अब अपनी प्रवृत्ति को समेटो, क्योंकि कारोबार में उलझन तो है ही, अपने कारोबार को अलौकिकता की ओर ले आओ तो उसमें उलझन नहीं है। तो इस तरह की बातें बोल, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की कि हम बोल के द्वारा, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की कि हमारे पास्ट कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे पिछले पाप कर्म या इस जन्म के पाप कर्म। अब उसका समाधान क्या है कि जो जीवन में पास्ट कर्मों के कारण जब समस्याएं आती हैं तो हमें अपना माइंडसेट कैसा बनाना है ताकि हम उसमें परेशान न हो। क्योंकि जब पिछले कर्मों के फल स्वरूप समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति वहां पे लाचार हो जाता है, वहां वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, अपने माइंडसेट को चेंज करो, उसे फ्लेक्सिबल बनाओ। हमें वो बातें नहीं बतानी है जो बाबा ने मुरलियों में बताई है, जो जनरल है, जो सबके लिए है, पर चिंतन नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, ये सब ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत बोल, महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है ना, लेकिन महाभारत के पीछे सार क्या है? एक कटु वचन, एक ही कटु वचन, अंधे की औलाद। रामायण हमारे यहां का सबसे पॉपुलर धर्म ग्रंथ, सीता जी चोरी हो जाती हैं और फिर इतनी बड़ी रामायण की कथा का निर्माण हो जाता है। अब एक ही गलती सीता जी से हुई, मर्यादा की लकीर से कदम बाहर रखा, रावण ले गया, भटकते रहे, वो भी दुखी, राम भी दुखी, लक्ष्मण भी दुखी, सब दुखी। हमारी समस्या का कारण मर्यादाओं को पार करना, बोल, सोच, अहम भाव। किसी ने कहा दूसरों को रेस्पेक्ट ना देना, ये एक प्रैक्टिकल कारण है। हम जब दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत अव्वल हैं, सामने वाले व्यक्ति से हर चीज में अच्छे हैं, उससे सीनियर है, उससे ज्यादा ज्ञानी है, उससे ज्यादा लौकिक रीति पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हमको उसको सम्मान देना है। सब कुछ होते भी सम्मान देते हैं तो रिटर्न में क्या मिलता है? सम्मान। और फ्री में एक चीज और मिल जाती है, क्या मिलता है? सम्मान के साथ एक और चीज क्या मिलता है? सहयोग भी मिलता है ना। किसी से बहुत पोलाइटली आप व्यवहार में आए तो वो भी पोलाइट हो जाएगा, और फिर कभी भी आपको कुछ मदद की जरूरत होगी वो व्यक्ति आपको मदद करेगा, आपका जीवन निर्विघ्न बनेगा, कभी वो व्यक्ति आपके जीवन में रोड़ा नहीं अटकाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिकल सोच कैसे हमारे विघ्नों को बढ़ाता है, तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातों पर आप सब चर्चा करेंगे, उसे लिखेंगे और एक प्रोजेक्ट के रूप में लेंगे कि भाई एक एक चीज पर मुझको 15-15 दिन, एक एक महीना पुरुषार्थ करना है। मुझे बोलने की आदत है, बहुत बोलना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत बोलते हैं, और बोल की क्या स्थिति है, बहुत बोलने वाला कभी ना कभी गलत बोल ही देगा, और जब गलत बोलता है तो वो हमारे लिए विघ्न का कारण बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलेंगे तो आधी समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल कारण हैं जिनको हमें निकालना चाहिए। अमृत वेला न करना एक बहुत बड़ा कारण है जीवन में विघ्न उत्पन्न करने का। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल विषयों पर जो बातें हैं उस पर आप चर्चा करेंगे, उसका एक नोट्स तैयार करेंगे। चिंतन का मतलब ये है कि उस पर हमें पुरुषार्थ करना है, हमें वर्कआउट करना है। चिंतन केवल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, दूसरों को सुनाने के साथ साथ खुद को भी सुनाना है, खुद उस पर पुरुषार्थ भी करना है। इस रीति हमको पॉइंट्स निकालने हैं। अहम भाव, दूसरों को रिगार्ड ना देना। बाबा कहते हैं बालक सो मालिक, एक बहुत अच्छा गुण है। जो लोग सेवा केंद्रों पर रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, सबके लिए है वैसे, लेकिन वहां क्या होता है, टकराव होता है टीचर्स बहनों में और स्टूडेंट्स में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बड़ी उम्र के होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनका अपना एक अहंकार होता है, बहुत सेवा करते होंगे, बहुत सहयोग देते होंगे, उनको लगता है ये बहनें तो छोटी छोटी, मेरे सामने तो बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी भी कम है, लेकिन रखा किसने है, निमित्त किसने बनाया, भगवान की सीट पर वो बैठे हैं ना। तो कई बार क्या होता है, बाबा कहते हैं मालिक बनकर राय दो, लेकिन अगर आपकी राय उन्हें पसंद नहीं आई, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो आप बालक बन करके क्या करो, उसे स्वीकार कर लो। हम नहीं कर पाते हैं वहां क्लैश शुरू होता है, फिर जीवन में परिस्थितियां आती हैं, टकराव आएगा, फिर पुरुषार्थ हमारा ढीला हो जाएगा, योग हमारा लगेगा नहीं, मन में संकल्प बहुत चलेंगे। तो आप आज जब जाएं भोजन के बाद, इसी शांत अवस्था में, मौन की स्थिति में, एकदम फरिश्ते की तरह आप सब भोजन पर जाएंगे, भोजन करके कमरे में जाकर थोड़ा विश्राम करके उठ करके आप इस पर चिंतन करेंगे और अपने लिए पुरुषार्थ का एक अच्छा लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में।